ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ചാപ്റ്റർ 13, ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 3. इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से 6 विषयों के विषय में पूछा, 6 चीजें पूछी. अर्जुन ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव, यानी प्रकृति क्या है और पुरुष यानी भोक्ता कौन है. उसके बाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है. एतद्वेदि तुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, ज्ञान क्या है और जानने योग्य ज्ञेय क्या है. इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 2 में बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते. ये जो शरीर है वो क्या है, क्षेत्र है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, इसमें रहकर आप कार्य करते हो. एतद् यो वेति तम राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि. और जो इस शरीर को जानने वाला है, यानी जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है और इसके विषय में जानता है, इसके कार्यकलापों को समझता है, वो क्षेत्रज्ञ है. यानी कि जो पहले दो बातें है ना, पुरुषम और प्रकृति, उसको भगवान ने बैंडेड रखा हुआ है. जो दूसरी दो चीजें क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ, इनके बारे में बता दिया. आज भगवान श्री कृष्ण इसके बाद वाली चीज, जैसे दूसरी लाइन में नहीं पूछा है, एतत् वेदि तुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव. ये जो ज्ञान वर्ड लिखा हुआ है ना, सेकंड लाइन का थर्ड लास्ट वर्ड है, जो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बताना चाहेंगे कि ये ज्ञान क्या है. क्योंकि अर्जुन का ये भी क्वेश्चन था ना, भगवान सारी चीजें बता रहे हैं, अब ज्ञान के विषय में बता रहे हैं. ये ज्ञान का जो विषय है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. वास्तव में इस संसार में हम ज्ञानी किसको कहते हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन हो, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो, या फिर जो भौतिक चीजों में जिसको ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसको ज्ञानी कहते हैं. लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, है ना. अब देखते हैं भगवान के नजदीक, भगवान के समक्ष ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं. अब भगवान बताएंगे श्लोक नंबर 3 में, श्रवण कीजिए. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम मतलब क्षेत्र जो भी है. अब देखो, पहले भगवान ने कहा था जो क्षेत्र को जानता है वो क्या है, क्षेत्रज्ञ है. अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि खाली जो आपके अंदर आत्मा है वो थोड़ी ना खाली क्षेत्र को जानती है. मैं जो बैठा हूं तुम्हारे सामने, क्षेत्रज्ञम चापी, चापी मतलब निश्चय ही माम, मुझे जानो क्षेत्रज्ञ. खाली तुम नहीं हो, क्यों, क्योंकि विद्धि सर्व क्षेत्र भारत, क्योंकि मैं सारे क्षेत्रों के बारे में जानता हूँ. जितने भी शरीर रूपी क्षेत्र हैं संसार में, तो एक मनुष्य, एक जीव आत्मा अपने शरीर के विषय में जानती है ना. लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में तो क्षेत्रज्ञ आप मुझे जानो, क्षेत्र को जानने वाले, क्योंकि मुझे तो सब के बारे में पता है. क्या पता है, भूत भविष्य वर्तमान, जो भी हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे सबके बारे में पता है, तो फिर क्षेत्रज्ञ वास्तव में तो मैं हुआ. और आगे बता रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, यानी कि जो कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को जानता है, ज्ञानम मतलब उसको जानता है, तज ज्ञानम मतम मम, मेरे हिसाब से, तज मतलब जो, ज्ञान मतलब ज्ञान, मतम मम, मेरे हिसाब से ज्ञान उसको कहते हैं. अब समझ में आ रहा है. देखो, भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा ये शरीर क्षेत्र है, और जो शरीर को जानता है, अपने शरीर को जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, यानी आत्मा, ठीक है. लेकिन भगवान ने कहा वास्तव में तो क्षेत्रज्ञ वो है जो केवल एक शरीर के विषय में ना जानता हो, समस्त शरीरों के, समस्त क्षेत्रों के विषय में और समस्त क्षेत्रज्ञों के विषय में जानता हो. वास्तव में तो वो क्षेत्रज्ञ हुआ ना, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं हूँ सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ, जानने वाला मैं हूँ. और ज्ञान के विषय में यदि तुम पूछ रहे हो कि ज्ञान क्या है, तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है वही ज्ञान है मेरे हिसाब से. यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत उत्तम रीति से श्लोक को समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शरीर, शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे। यानी कि अगर हम शरीर, शरीर के ज्ञाता आत्मा और परमात्मा के बारे में बोलना चाहेंगे तो फिर तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं। कौन से? भगवान, जीव तथा पदार्थ। अब देखो, शरीर जो है वो पदार्थ से मिलकर बना है। कौन से पदार्थ हैं? जैसे स्थूल शरीर पांच चीजों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब से मिलकर बना। और उसके बाद जीव के बारे में, आत्मा है उसके अंदर, तभी वो सर्वाइव कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और परमात्मा का अंश है, परमात्मा है उनके अंदर, तभी वो सक्रिय है। ये तीन टॉपिक मिलेंगे, आत्मा, परमात्मा और पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, जैसे हम पहले बताया था कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों शरीर के अंदर प्रत्येक कर्म क्षेत्र यानी शरीर के प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा और परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं है, स्वांश है, भगवान श्री कृष्ण का स्वांश फैलाव है। अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि मेरा एक अंश है आपके शरीर के अंदर, एक परमात्मा रूप में मैं बैठा हुआ हूँ, तो फिर मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं इन्फरादी इंडिविजुअल ज्ञानी नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ, मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। समस्त शरीरों में जितने भी शरीर है उसमें परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है, इसीलिए भगवान परम ज्ञाता है, सबके शरीरों के विषय में जानते हैं। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए, अब आप पे ना इसको लाइट नहीं ले सकते हो, आपको सूक्ष्मता से बहुत ही सीरियस होकर ये चीज को समझना होगा, तभी आप समझ सकते हो। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। यानी कि जितने भी शरीर हैं उनको, उनके जो कर्म हैं उन सबको जानता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण ने जब दूसरे श्लोक में बताया ना, क्षेत्रज्ञ आप हो जो जीव है। अब व्यक्ति तो अपने शरीर के विषय में जान सकता है, जैसे अभी मुझे कोई पेन हो रहा है, जैसे मेरे टीथ में दर्द हो रहा होगा तो मुझे अपने शरीर का पता है, लेकिन आपको मेरे बारे में नहीं खबर ना। आपको मैं बता भी दूं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो आपको, आप महसूस तो नहीं कर सकते ना उस प्रॉब्लम को। आपको पता चल गया लेकिन उसको रियलाइज नहीं होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। यानी कि उसके हर चीज के बारे में जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कर्षन। तो भगवान श्री कृष्ण 7.26 में हमें ये बता चुके हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ आपके विषय में। और जानना ही नहीं, हमें तो आज हमारी ये स्थिति है कि हम भूल जाते हैं। अब परसों दोपहर को आपने कौन सी सब्जी खाई थी सोचे बगैर नहीं बता सकते। तो भगवान के विषय, भगवान तो भूलते ही नहीं है ना, भगवान को सब कुछ याद होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त शरीर को विश्व में जो जानता है वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों के को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है लेकिन राजा को ना केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भूमि संपत्ति का ज्ञान रहता है। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताना, मतलब श्री प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक नागरिक, एक शहरी को सिर्फ अपने ही बारे में पता होता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन राजा को सारी चीजों का पता होता है कि सारे नागरिकों के पास कितनी कितनी भूमि है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के आधिपति हैं। अब भगवान तो समस्त शरीरों के हृदय में विराजमान है, तो आधिपति वही है, राजा वही है। राजा अपने साम्राज्य का मूल आधिपति होता है और नागरिक गौण आधिपति होता है। अब देखो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में बड़ा आधिपति यानी कि बड़ा क्या है यार, इनके मूल जो साम्राज्य का आधिपति का मतलब होता है नाजिम या प्रोप्राइटर। राजा जो होता है वो मेन होता है ना, सादा मालिक तो वो होता है, लेकिन जो नागरिक होता है वो गौण होता है, नीचे वाला अधिपति होता है, वो भी एक तरह से उसका नाजिम होता है, उसका प्रोप्राइटर, लेकिन वो नीचे राजा से जितना तो नहीं होता। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। समस्त शरीरों के रियल मालिक जो है वो कौन है? भगवान है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, ये बात आप सब जानते हो कि ये शरीर जो है वो इंद्रियों से बना है। कौन सी इंद्रियां हैं? देखो, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, ये हमें याद रखना चाहिए कि ये शरीर इनसे बना हुआ है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नायक। अब ऋषिकेश का मतलब ही ये है कि वो इंद्रियों को संचालित करते हैं, इंद्रियों को। ये पावर जो है वो किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है, और केवल कृष्ण ही के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। वास्तव में संसार में शरीर देखो इंद्रियों से बना हुआ है ना, तो जिस जिस के पास ये इंद्रियां हैं वो इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए परेशान होता है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करूं। यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों को तृप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियों, कुछ लोग ऐसे भगवान के पास भी जाते हैं ना, तो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं कि मैं क्या, कृष्णा आप ऐसा करो मेरी इंद्रिय तृप्त हो जाए, मैं आप ऐसा करो मैं मुझे इंद्रियों को सुख, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप ऐसे करो। वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण कुछ करेंगे और आपकी इंद्रियों को खुशी होगी। असलियत पता है क्या है? असलियत ऐसी है कि आप अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ ऐसा करो कि कृष्ण को संतुष्टि मिले। जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो इनडायरेक्टली आप अपनी इंद्रियों को खुश करोगे। डायरेक्ट से अपनी इंद्रियों को खुश करने का प्रयास असफल ही जाएगा। इंद्रियां तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती, ऐसा इंद्रियों का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वो संतुष्ट हो। इसलिए क्या करना है, जैसे हम अपनी इंद्रियों को कभी भी अलग अलग से भोजन नहीं देते, आंख को, कान को, नाक को, इस तरह भोजन नहीं देते। क्या करते हैं? माउथ से भोजन खाते हैं और पेट के अंदर जाता है। लेकिन कभी कोई इंद्रिय कभी ये कंप्लेन करती है कि भाई, कोई उंगली ने कभी कंप्लेन की कि भाई मुझे तो खाना भी नहीं दिया, आंखों ने कभी बोला तो सारा दिन देखती रहती हूँ, मुझे तो कुछ जूस भी कभी नहीं पिलाती हो आप? नहीं, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव स्वयं सुख लेकर सुखी होना नहीं है। इंद्रियों का स्वभाव पेट को, जब अंदर पेट में खाना जाता है तो खुद। इसी तरह से बाकी जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ये सब कैसे संतुष्ट होती हैं? वो जब कृष्ण संतुष्ट होते हैं, जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो कृष्ण की खुशी का ये फल है, कृष्ण को संतुष्ट करने, ये गोविंद है। गोविंद जब संतुष्ट हो जाते हैं तो इनडायरेक्टली हमारी इंद्रियां खुद ब खुद संतुष्ट हो जाती हैं। अलग अलग से प्रयास करेंगे ना तो कभी भी हमेशा असफल रहेंगे, कभी सफल नहीं हो सकेंगे। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होता है। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता हूँ। भगवान ने कहा है ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा मैं ज्ञाता हूँ, इसका अर्थ यह है कि वे परम ज्ञाता हैं, वे सब शरीरों के विषय में जानते हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जान सकता है, यानी जो इंडिविजुअली अपने शरीर को जानता है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर शरीर के विषय में जानता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति सयोगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। अर्थात यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्राणी ही शरीराणी क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है। बीजम चापि शुभाशुभम तानि वेत्ति संयोगात्मा, यानी इसके अंदर एक उसका स्वामी है, शरीर का स्वामी यानी आत्मा है और साथ ही परमात्मा है। तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानता है, क्षेत्रज्ञ है, वास्तव में दोनों को जानता है, शरीर को भी और शरीर के स्वामी को भी जानता है, इसलिए वास्तविक क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही है कि देखो, अर्जुन ने पूछा था क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र कौन है? ये शरीर, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? गौण क्षेत्रज्ञ वो है जो इस शरीर का आत्मा है, लेकिन वास्तविक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, जो कि शरीर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है। और आत्मा, परमात्मा और शरीर को संपूर्ण जो जानता है, उसके विषय में जानने को ज्ञान कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी बताए, आगे हम और भी इसको डिटेल से बताएंगे। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिजीत की जाती है। अब देखो, वैदिक जो ग्रंथ हैं, उनमें ज्ञान किसको कहा जाता है? आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी। यहाँ संसार में तो कचरा ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उसमें ना आत्मा तक पहुंची नहीं आज की साइंस अभी तक। पूछो, आत्मा के विषय में किसी को खबर ही नहीं है, क्योंकि आज की साइंस तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर डिपेंडेड है ना, उसको जो नजर आता है। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसके विषय में तो वो जान ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बालाग्रे शतभागश पुनः शतशाग, यानी कि एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर, उसका बाल का जो नोक है उसके 10,000। कौन सा इसके पास ऐसा साइंस के पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए इस आत्मा को देख सकेंगे? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न शयनम क्लेदयन्ति आपो, न शोचति मारुतः। ऐसी आत्मा के विषय में आज तक साइंस जान नहीं सका, तो आज का जो भी ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान है, वो सब व्यर्थ है, वो ज्ञान कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी। जो आपको आत्मा, अब आज की साइंस आत्मा को जान नहीं सकती, तो परमात्मा को क्या खाक जानेगी? तो ये ज्ञान तो भगवान तो इसे ज्ञान नहीं मानते हैं, वेद तो इसे ज्ञान नहीं मानते हैं। वेद तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी को ज्ञान नाम से अभिजित किया जाता है। ऐसा कृष्ण का मत है। कृष्ण ने तो ये बताया, क्या बताया? तज्ज्ञानम मतम मम, यही ज्ञान है मेरे हिसाब से। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यानी कि जब तक आप अपने शरीर, अपने आत्मा और अपने परमात्मा को नहीं समझ सकते, तो समझो ज्ञानी नहीं हो। अगर अपोजिट किया जाए तो समझो बेवकूफ हो। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष प्रकृति का भोक्ता, यानी कि अब देखो, प्रकृति पुरुष जो अभी दो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है ना, उसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, भगवान, उनकी स्थिति को समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। यानी कि प्रकृति पुरुष और पुरुष जो ये भोक्ता है, जो कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, इन सब के विषय में सही सही समझना चाहिए। कोई भी भ्रम नहीं अपने अंदर, कोई भी इस तरह की ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सही तरह से खबर ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। अब देखो, ये चीजें श्री प्रभुपाद जी मिसाल दे रहे हैं। एक तो चित्रकार होता है जो कि बना रहा होता है, ठीक है, कोई भी जैसे फोटो बनाता है या कोई भी सीनरी बनाता है, उसको चित्रकार कहते हैं। चित्र उस तस्वीर को कहते हैं, उस दृश्य को कह रहे हैं जो कि बनाया हुआ है, जैसे कुछ बना है ना, कोई सीनरी बनी हुई है, उसको चित्र। तथा तूलिका उस ब्रश को कहते हैं जिससे वो बनाया गया है। तो उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि इसमें से कौन सा चित्र है, कौन सा चित्रकार है, कौन सा ब्रश है। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है प्रकृति है। वास्तव में अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रकृति क्या है, ये भौतिक जगत प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है। इस प्रकृति का जो भोग कौन भोग कर रहा है, हम कर रहे हैं ना। इस प्रकृति में क्या है, भूमि आपो नलो वायु खम मनोबुद्ध, ये सब भोग रहे हैं हम जब से पैदा हुए हैं। तब कोई बंदा ऐसा आया था जो अपने साथ एक ना मट्टी की एक टोकरी लेकर आया था कि भाई मैं उधर जाऊंगा संसार में तो खड़े होने के लिए मुझे अपनी जगह चाहिए होगी, जहां पर मैं बैठूं एक मट्टी थोड़ी मुझे चाहिए बैठने के लिए। नहीं, भगवान ने पहले से ही उसके लिए धरती बन, ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य पैदा हो और उसके लिए भगवान ने जगह नहीं छोड़ी हो संसार में। कोई जीव जगह है उसके लिए, कभी थोड़ा सा भगवान को बोला हो भाई मैं जा रहा हूं तो मेरे लिए सूर्य प्रकाश को वृद्धि कर दो कि अभी मैं भी तो सूर्य में से प्रकाश में काम करूंगा ना, तो नहीं, वो भगवान ने पहले से उसके लिए प्रोवाइड कर रखा है। कभी भगवान को बोला थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा कर देना, संसार में जा रहा हूं मैं, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जितना लोग, लेकिन भगवान ने ये सारी चीजें पहले से ही प्रोवाइड करके रखी है। और उसको भोग कौन रहा है, उसको भोग रहा है जीव, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। किन दोनों के ऊपर, प्रकृति और जीव दोनों के ऊपर परम नियामक कौन है, भगवान। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया 1.12, भोक्ता भोग्यम परेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। यानी ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, कौन कौन से, प्रकृति, कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है। एक तो प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में, क्योंकि इस प्रकृति में रहकर हम लोग करते हैं, तथा जीव भी ब्रह्म है। एक तो ये शरीर भी प्रकृति है ना, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो एक शरीर और दूसरा जीव भी ब्रह्म है। क्यों, क्योंकि जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, वो सोचता है कि मैं इस प्रकृति को, इस जिस्म को अपने नियंत्रण में रखूंगा, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। असल में इन दोनों का नियामक जो है वो भगवान है, परमात्मा है, जो इन दोनों को संचालित कर रहा है। किसको, प्रकृति को और जीव को, दोनों को संचालित कर रहा है, दोनों को अपने अंडर में रख रहा है। वो भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक तो वही है, वही जो परमात्मा है, वही इन दोनों को अंडर में रख के कार्य करता। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, दूसरा च्युत है। अच्युत का मतलब होता है बेखता, जिस जो कभी कोई अपराध नहीं करता, और दूसरा च्युत यानी जिसे खता होती रहती है, वो अपराध करता रहता है। अब इन दोनों में, किन दोनों में, जो दो क्षेत्रज्ञ बताया ना, एक जीव और दूसरा परमात्मा, इन दोनों में से एक के बारे में, एक तो प्रकृति है, पदार्थ है, उसको तो दोनों समझ रहे हैं। एक पहला जो आत्मा है वो समझ रहा है मैं नियामक हूँ, लेकिन वास्तविक नियामक तो वो है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, यानी परमात्मा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे बताया जाएगा कि इनमें से एक अच्युत है, बिल्कुल बेखता है, और दूसरा खतावार है। इनमें से एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है, यानी कि एक श्रेष्ठ है वो उसको कंट्रोल कर रहा है और दूसरा उसके कंट्रोल में। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा सुपरमात्मा, यानी कि जो अद्वैतवाद होते हैं ना, अद्वैत का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इसमें बताया ना क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि क्षेत्र। मैं असल में यहाँ पर कल तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले क्या बताया है, एतद् यो वेति तं प्राह क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानता है वो आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। इसलिए भगवान ने बता दिया है कि दो हैं, एक नहीं है, एक उसमें से एक अधीन है तो दूसरा श्रेष्ठ है। तो फिर जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सत जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है, यानी कि श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो तो बेवकूफ भी होगा ना, जो रस्सी को भी बोलता है हाँ ये भी रस्सी है, वो भी, ये भी सांप है, वो भी सांप है, दोनों को रस्सी समझे। शरीर कोई कई प्रकार के हैं और उनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्व की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर भिन्न होते हैं लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे, देखो बहुत सारे शरीर हैं और उन समस्त शरीरों के अंदर जो जीव है वो भी अलग अलग है, उसकी एक अपनी निजी सत्ता यानी अपनी एक इंडिविजुअल हैसियत है, वो एक अलग उसकी इनफरादी हैसियत है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुत्व बनाने की सामर्थ्य रखता है। वो खुद कर रहा होता है, अपनी इस प्रकृति को संभाल रहा होता है, काम कर रहा होता है। अतएव शरीर भिन्न होता है लेकिन क्या है, भगवान उन सबों में परम नियंता के रूप में विद्यमान है। भगवान ऐसे हैं जो सब में हैं, हर कहीं पर परमात्मा का वास है। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी बोले च जो वर्ड बताया गया, क्षेत्रम चापी माम विद्धि, चा मतलब भी मतलब एक वो भी और मैं भी, यानी कि दो हैं, भगवान ने एक नहीं बोला है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है, यानी कि मैं सारे शरीरों को, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो सारे शरीरों को जानता हूँ। यह श्री बलदेव विद्याभूषण का मत है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी जो कि बहुत महान भाष्यकर, भगवद्गीता के महान टीकाकार हैं, उन्होंने इसे इसकी व्याख्या की। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियमित है। यानी कि कर्म क्षेत्र कौन, यह शरीर, और विशिष्ट भोक्ता कौन, इंजॉयर, जो इस शरीर के अंदर रहकर इंजॉय कर रहा है, जीव आत्मा, इन दोनों का नियामक है, इन दोनों का कंट्रोलर है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब समझो यहाँ पर हमारी तीसरी चीज सोल्व हो रही है। एक तो भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन ने पूछा, कल बताया भगवान ने कि क्षेत्र क्या है, ये शरीर कर्म क्षेत्र है क्योंकि इसमें रहकर हम लोग काम करते हैं, और इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन आगे भगवान यानी जीव आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है वो क्षेत्रज्ञ, लेकिन भगवान ने आज बताया क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र क्षेत्रीय शुभारत, वास्तव में रियल क्षेत्रज्ञ तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं तो सर्व क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्रों को जानता हूँ। और आगे बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम, यानी कि जो क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है, तज ज्ञानम मतमम, मेरे हिसाब से तो वो ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो भी है उसको भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं कहा है। आगे इस चीज को भगवान श्री कृष्ण और श्री प्रभुपाद जी की सहायता से हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।